assumptions. में रशियन लेखक लियो टॉलस्टॉय की पब्लिश एक किताब में एक कहानी का वर्णन है, जिसमें एक मोची है जिसका नाम है साइमन। वो बाजार से कुछ सामान लेने गया है, पैसों की तंगी है, कुछ सामान ले पाता है कुछ नहीं ले पाता, और जब रात में लौट रहा होता है तो चर्च के पास एक विचित्र आकृति उसे दिखती है। नजदीक जाकर वो देखता है तो वहां एक व्यक्ति खड़ा है, भिखारी सा है। साइमन को पहले डर लगता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है ऐसे दिखाते हुए कि उसने नहीं देखा, पर जब पीछे मुड़कर देखता है तो ठंड में वो व्यक्ति कांप रहा होता है। उसे दया आती है, वो उसके पास जाता है, अपना कंबल देता है, अतिरिक्त जूतों का एक सेट उसके पास होता है, वो उसे देता है और उस व्यक्ति को वो घर ले आता है। पत्नी जैसे देखती है कि पहले ही कमी है और ये किसी अजनबी को साथ में लाया है पति, वो गुस्सा हो जाती है। फिर भी उस व्यक्ति को अंदर आने देती है। उसका पति उसे बताता है ये कौन है। एक बार पूछा भी था उसने कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। वो व्यक्ति कहता है मैं नहीं बता सकता, ईश्वर ने मुझे दंड दिया है, बस इतना ही कहता है। और जब घर पर आता है तो वो पत्नी पहले बहुत क्रोधित होती है, बाद में थोड़ी पिघल जाती है। वो लोग उसे बिठाते हैं, भोजन देते हैं और तब अचानक वो व्यक्ति मुस्कुराता है पहली बार, द फर्स्ट स्माइल। वो मोची कहता है यदि तुम्हारे पास कोई काम ना हो तो तुम मेरा हाथ बटाओ कल से। वो मान जाता है और फिर कई वर्षों तक वो वही काम करता है। अचानक एक दिन एक अमीर व्यक्ति उस मोची की दुकान में आता है और कहता है मुझे जूता चाहिए जो एक साल तक खराब ना हो। वो व्यक्ति फिर से मुस्कुराता है सेकंड टाइम, कारण नहीं बताता, केवल मुस्कुराता है। परंतु वो जूते बनाने के बजाय चप्पल बना देता है। उसका मालिक उसे डांटता है तुमने ये क्या कर दिया, और तभी उस अमीर व्यक्ति का संदेश वहां का आता है और कहता है उस अमीर व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब जूतों की आवश्यकता नहीं, अब चप्पल चाहिए, और वो चप्पल ले चला जाता है। कुछ दिनों बाद उसी दुकान में एक अमीर महिला आती है, उसके साथ दो लड़कियां हैं, एक अपंग है, उनके लिए जूते खरीदने के लिए, और उस महिला को वो देखता है। वो दोनों लड़कियां उसकी अपनी संतान नहीं है, अनाथ आश्रम से उसने उन दोनों को उठाया है, और उनकी देखभाल कर रही है। यह दृश्य देखकर वो व्यक्ति तीसरी बार हंसता है। पहली बार जब वो घर आया था, दूसरी बार जब वो अमीर व्यक्ति जूते मांगने आया था तब, और अब तीसरी बार वो हंसता है, मुस्कुराता है। वो मालिक पूछता है, ये क्या है तुम्हारा, क्या रहस्य है? तब वो व्यक्ति कहता है, मैं वास्तव में एक फरिश्ता हूं, मुझे खुदा ने भेजा था धरती पर एक महिला के प्राण ले जाने के लिए। कहानी रूस की है, 1885 में लिखी हुई। What Men Live By इस कहानी का शीर्षक है। फरिश्ता कहता है, मैं उस महिला को लेने आया, परंतु अभी अभी उस महिला ने दो कन्याओं को जन्म दिया था और उसका और कोई नहीं था। मुझे दया आ गई और मैं उसे नहीं ले गया, इसीलिए ईश्वर ने मुझे दंड दिया और कहा तुम्हें इसी धरती पर रहना है जब तक तुम तीन प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढ लेते तब तक। और पहला प्रश्न है, मनुष्य के भीतर क्या है? दूसरा प्रश्न है, मनुष्य को किस बात का पता नहीं है? और तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को कौन चला रहा है? जब तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे तब तुम वापस इस धरती से आ सकते हो। वो फरिश्ता कहता है, पहली बार जब मैं आपके घर आया तो जो पत्नी में क्रोध भरा था वो धीरे धीरे पिघल गया और उसने प्रेम से मेरी देखभाल की। मुझे अपने पहले प्रश्न का उत्तर मिला कि मनुष्य के अंदर केवल प्रेम ही है, बाकी जो ऊपर से वो दिखाता है वो उसका वास्तविक स्वरूप है ही नहीं। उसका मूल रूप प्रेम है और जब अपने स्वरूप में वो स्थित होता है तभी उसे शांति की अनुभूति होती है। ये मेरे पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरे प्रश्न का उत्तर था, मनुष्य को किस बात की खबर नहीं है? उसे अपने भविष्य और अपनी आवश्यकताओं का कोई भी ख्याल, कोई भी बात पता नहीं है। उसे पता नहीं आगे क्या होने वाला है। यह जीवन अप्रत्याशित है, अनप्रिडिक्टेबल। कब क्या होगा कुछ भी खबर नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा था, अमीर व्यक्ति ने, एक साल तक जूता चले, ऐसा जूता बनाना है, पर उसकी मृत्यु होने वाली थी ये उसे पता ही नहीं था। तो मनुष्य को अपने भविष्य का, अपनी आवश्यकताओं की कोई खबर नहीं। तीसरा प्रश्न था, मनुष्य को कौन चला रहा है? वो महिला उन दो अनाथ बच्चियों की पालना करनी है। ये दो ही बच्चियां वही थी जिसे फरिश्ता उस महिला को लेने आया था। महिला मर गई थी, उसकी ये दो बच्चियां थी, उसमें से एक अपंग थी और उसको इस महिला ने दत्तक एडॉप्ट किया था। वो देखता है कि मनुष्य को चलाने वाला वो प्रेम ही है। उसे उसके तीनों ही प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं और अचानक एक दिव्य प्रकाश उस व्यक्ति के इर्द गिर्द छा जाता है। उसके पंख वापस आ जाते हैं और वो वापस अपने लोक में लौट जाता है। एक छोटी सी कहानी है, What Men Live By। जो दर्शाती है कि वो प्रेम ही है, वो प्रेम की ही ऊर्जा है जो मनुष्य के भीतर है, वो प्रेम की ही शक्ति है जो उसे चला रही है, वो प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है और वो प्रेम ही ईश्वर भी है। इसलिए आज क्या कहा बाबा ने स्लोगन में, क्या कहा? रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए क्या बनो? मास्टर स्नेह का सागर बनो। जीवन अनिश्चित है, अप्रत्याशित है, कोई अनुमान नहीं कल क्या होगा। और धन, पैसा आता है जाता है, चंचल है, हमारे साथ वही जाता है जो सूक्ष्म पुण्य हमने कमाया है, अपनी वाणी से जिसने अनेकों को सुख दिया है, उसकी वाणी में अपने आप ऊर्जा भर जाती है। और जिसने अपनी वाणी से अनेकों का दिल दुखाया है, पाप किए हैं, अपने आप वाणी की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए मास्टर प्रेम का, स्नेह का, प्रीत का, मोहब्बत का सागर बनो। प्रेम ऊर्जा है, दूसरों के दिलों पर राज करना, दूसरों के मनों को जीतना, दूसरों के हृदय को की देखभाल करना, बड़ा काम है। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी, ये मुरली बाबा मिलन में चली थी 2018 में, नीचे पहली बार 2009 में, फिर 2018 में, और फिर आज थर्ड टाइम ये मुरली चल रही है 2026 में। तो आज सुबह की अव्यक्तवाणी क्या क्या कहा बाबा ने, क्या क्या कहा, जो नीचे बैठी हुई माताएं हैं वो बताएंगे पहले। और किसी भी क्लास में, मुरली में जब बैठो तो हाथ में नोटबुक होनी चाहिए, हाथ में पेन पेंसिल होना चाहिए, ताकि अच्छी अच्छी जो पॉइंट्स निकले वो हम नोट करके रखे और बाद में उनका चिंतन करे। नहीं तो वो केवल कनरस मात्र है, वाणी विलास है, बुद्धि विलास है। वक्ता आया, अपना भाषण पूरा किया, वो चला गया। जैसे भक्ति में राम कथा सुनने के बाद उठते समय कपड़ों को झाड़ते हैं, वैसे ये ज्ञान भी बड़ा वोलेटाइल है, एवोपोरेट हो जाता है, वाष्पीभूत। इसलिए मुरली सुनते समय, क्लास सुनते समय, चाहे सुनाने वाला कोई भी हो, तीन चीजें एक साथ होनी चाहिए। सबसे पहला कार्य सुनना, दूसरा लिखना, और तीसरा योग का प्रयोग। ऊपर से परमात्मा किरणें मुझ पर पड़ रही है, मेरी बुद्धि दिव्य हो रही है, जो धूल है मन पर पड़ जाती है दिन भर। रोज रात्रि क्लास होता है ना, तो सोचो ऊपर से किरणें आ रही है और धूल छट रही है। तो ये तीनों ही कार्य एक साथ होते रहे, एक सुनना, दूसरा लिखना, और तीसरा योग। चाहे कुछ भी सुन रहे हो, मधुवन में आए हैं तो ज्ञान रत्नों से झोली भर कर जानी है, खाली हाथ नहीं जाना है। क्योंकि मन में दिन भर में हजारों बातें होती रहती है, चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं, उसमें ज्ञान की भी बातें कहीं घुस जाती है, खो जाती है। इसलिए क्या चाहिए? बुक, डायरी, मुरली की डायरी अलग, क्लासेस की डायरी अलग, दो डायरी। और अगले दिन जो हमने अपने हाथ से लिखा है, जब हम खुद पढ़ते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, वो भीतर चली जाती है बात। और चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, चाहे छोटी बच्ची ही क्यों ना हो, चाहे अभी अभी कोई ज्ञान में आया है और वो अपना अनुभव क्यों ना सुना रहा हो, क्योंकि हर एक आत्मा अलग है, हर एक एक्टर यूनिक है, मास्टरपीस है, आवश्यक है इस ड्रामा में। और एक का अनुभव ना मिले दूसरे से, क्योंकि हर व्यक्ति एक भिन्न पार्श्वभूमि से आया है, उसके अपना एक जीवन है, उसकी अपनी आत्मा की एक यात्रा है, जो हमें साधारण सा सामने बैठा दिख रहा है, हो सकता है जन जन का वो वैरागी है, तपस्वी है, अत्यंत पवित्र आत्मा है, जिस अंधकार और देहभान और विकारों में हमने गोते लगाए, वो अछूता है उनसे कई कई जन्मों से। शब्द नहीं, प्रकंपन को कैच करना है। तो आज सुबह की अव्यक्त मुरली क्या क्या कहा? हम लेट आए हैं, ये संकल्प नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। ये संकल्प आना चाहिए, जरूरी है। दुख चुभना चाहिए कि हम लेट आए, ये चुभन ही पुरुषार्थ को तीव्र करेगी। हम लेट हो गए हैं, टू लेट हो गया है। तो क्या? तो दो बातें बताई यहां पर, फर्स्ट कमर्स के लिए, न्यू कमर्स जो नए आए हैं उनके लिए कौन सी दो बातें? इसी पैराग्राफ में आगे, एक सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। और दूसरा, वो तो वरदान है। दूसरा, वो हो गया कर्म और योग का बैलेंस। और क्या कहा? एक सेकंड गवाना नहीं, हो गया। और आशरीरी बनना है, फरिश्ता बनना है, पता नहीं और क्या क्या बनना है। और तीन रूप देखे, और एक एक गुण जमा करना है। ये कहां पर आया? हफ्ते भर का नहीं, आज का सुनाना है। और पूरी हो गई क्या चार पेज की मुरली? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्तों सो देवता बनना है। और डबल लाइट स्थिति, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव। और छोटी छोटी बातें, दिल खुश, दिल शिकस्त, छोटी छोटी बातें दिल शिकस्त न करे, क्योंकि ड्रामा है। इंग्लिश में एक शब्द है मेलोड्रामा, सुना है किसी ने? मेलोड्रामा, मेलोड्रामा अर्थात सनसनीखेज ड्रामा, जिसमें हर एक्टर को थोड़ा सा अतिरिक्त अतिशयोक्ति करके वो बोलता है, बड़ा चढ़ाकर बोलता है। ये ड्रामा भी कैसा है? एकदम सेंसेशनल ड्रामा। उसमें ऐसा ही सब कुछ अच्छा ही चलता रहा तो कैसे चलेगा? सीरियल बनाने को अपना सीरियल 500 एपिसोड्स का बनाना है, और एक परिवार है जिसमें सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, तो 500 एपिसोड कैसे चलेंगे? घर में कुछ तो होना चाहिए, कुछ गड़बड़, कुछ विलन की एंट्री, कोई टांग खींचने वाला, कोई निंदा करने वाला, कोई अपमान करने वाला, कोई षड्यंत्र करने वाला, कोई दुख देने वाला, कोई चुभाने वाला, ये सब नहीं होंगे। राम का महत्व रावण के बिना क्या है? एक ही जगह पर एक संपूर्ण निर्विकारिता में स्थित है तो संपूर्ण विकारों में दूसरा स्थित है, उसी की वजह से इसका महत्व भी है। और क्या कहा? सेवा करते समय शांति का अनुभव होना चाहिए, होना चाहिए या कराना है। और वायुमंडल में अशरीरीपन का एडिशन और कर्मातीत बनने का लक्ष्य और तीव्र पुरुषार्थ का अनुभव कैसे? और बहुत काल का स्वराज्य अधिकार चाहिए और डबल लाइट फरिश्ता, बहुत काल का स्वराज्य अधिकार और कर्मेंद्रियों का राजा बनना है और सर्व के प्यारे और संस्कारों को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना और अपनी भी विशेषता में नहीं फंसना, किसी और की विशेषता भी नहीं फंसना। विशेषता कला या फिर कोई गुण, विशेषता कला या गुण, सभी क्या है? ईश्वरीय प्रसाद है, ईश्वरीय देन है, परमात्म सौगात है। और अभिमान, ईगो डिटेक्टर एक्सरसाइज, अभिमान आया तो अभिमान को चेक करना है। यदि अपमान होता है, यदि अपमान चुभता है अर्थात अभिमान है, यदि अपमान चुभता है अर्थात अभिमान है, अर्थात भीतर अंदर में सूक्ष्म मान की कामना है, तो आज हम इस मुरली से 12 बातें निकालेंगे। फरिश्ता अर्थात फरिश्ता की 12 परिभाषाएं डायरी में लिखना है, केवल सुनना नहीं है, ताकि हम उसे रिवाइज कर सके, ताकि हमें वो याद रहे। यदि मन शांत है और जीवन में कोई परिस्थितियां नहीं, तभी ज्ञान याद नहीं, तो जब जीवन में हलचल होगी और परिस्थितियां आएगी तब कहां से याद रहेगा? तब तो और ही व्यर्थ चलता है। इसलिए जब शांति काल चालू है, शांति काल, वो समय किस में लगाना है? ज्ञान के अध्ययन में। ज्ञान शक्ति बन जाए, ज्ञान की साधना है, ज्ञान उपासना है, ये ज्ञान का गुरुकुल है। ज्ञान से स्वयं को सशक्त बनाना है, संवर्धन करना है स्वयं का। छुट्टी का दिन है तो लोग क्या करते हैं? समय बर्बाद, घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं। फरिश्ता अर्थात सबसे पहली परिभाषा इस मुरली से, हल्का। फरिश्ता अर्थात हल्का, किस में हल्का? संस्कारों में, संकल्प में, संबंध में। 3S। संबंध भी कैसे हो? हल्के, नहीं तो मन भारी रहता है और भारी मन योग नहीं कर सकता। झगड़े चालू है, बनती नहीं है, मन मुटाव है, और फिर योग करने बैठते हैं तो वही सब तो याद आएगा। संबंधों में हल्कापन, संकल्पों में हल्कापन। यदि षड्यंत्र कर रहे हैं, बदला लेने की सोच रहे हैं, उसने मेरे साथ ये किया, मैं क्या करूं, भक्ति में भक्त की कितनी भावना होती है, भक्तों के साथ कितना अत्याचार हुआ, परंतु उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये अत्याचार क्यों करते, वो सोचते थे वो चाहता है कि मैं सहन करूं, मैं उसके लिए सहन कर रहा हूं, मुझे इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। घर के ही लोग, सास ससुर ननद, वो बेचारी बहू सहन करती है क्योंकि वो भक्त है। वो सहन इसलिए करती है, इसलिए नहीं कि ये लोग मेरी महिमा करें आगे जाकर, क्योंकि वो चाहता है। सहन करती जाती है, करती जाती है, और उसे यह भी पता है, वो देख रहा है ना सब कुछ, वो मेरा रक्षक है, उसे पता है मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, उसे उससे कुछ भी छिपा नहीं है। क्या वो नहीं जानता? एक मस्जिद में एक फकीर रोज आता था, खड़ा रहता था और चला जाता था, फिर आता था, फिर खड़ा रहता था, चला जाता है। एक दूसरे श्रद्धालु भक्त ने उसे देखा और एक दिन पूछा उस फकीर से, आप इस मस्जिद में रोज आते हो पर मैं देखता हूं आप केवल खड़े रहते हो, होंठ तक नहीं हिलाते, ये कैसी इबादत है? वो फकीर कहता है, मैं एक बार रास्ते से गुजर रहा था, एक भिखारी एक राजमहल के सामने खड़ा था, और राजा वो बादशाह आया और उस बादशाह ने उस भिखारी से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भिखारी ने कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरे कपड़े फटे हुए, हाथ में कटोरा है और पेट पीट से लग रहा है, अगर मेरी यह अवस्था देखकर तुम्हें पता नहीं चल रहा है कि मुझे क्या चाहिए तो तुम राजा क्यों बने, तुम बादशाह क्यों बने? वो फकीर कहता है, उस दिन से मैंने उस खुदा से मांगना बंद कर दिया, क्योंकि उस बादशाह ने फिर थोड़ी देर के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, उसने उसे धन दिया, कपड़े दिए, अन्न दिए, और ये तो पूरे कायनात का शहंशाह है, मैं उसके सामने क्या इल्तिजा, क्या मांगू उससे, क्या प्रार्थना करूं? क्या उसे पता नहीं कि मुझे किस चीज की जरूरत है? क्या उसे पता नहीं मुझ में कौन सी कमी है? क्या उसे पता नहीं कि मेरा कल्याण किस में है? मैं केवल आता हूं और खड़ा रहता हूं, मेरा मौन ही मेरी प्रार्थना है, मौन ही इबादत है, मैं उससे क्या मांगू? मैं केवल उसको देखता हूं, उसको निहारता हूं, धन्यवाद देता हूं, बस। मांगना कुछ है ही नहीं, वो सब जानता है। फरिश्ता अर्थात सबसे पहली परिभाषा, हल्का, किसमें? संबंधों में हल्का, संस्कारों में हल्का, संकल्पों में हल्का, तीनों ही बातों में जो हल्का है, सौंप दिया है उसको, और जिनके मन में निरंतर षड्यंत्र चलते रहते हैं, छलकपट छलकपट छलकपट, वो हल्का कैसे रहेंगे? संबंधों में भी हल्का, विचारों में भी हल्का, लाइटनेस। एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, घूमने जाते समय एक जेब में भाई, एक जेब में कागज और एक जेब में पत्थर, एक राउंड लगाओ और देखो क्या अनुभव होता है, इधर हल्कापन इधर भारीपन, या हाथ में ले लो एक छोटा एक पत्थर एक हाथ में, एक हाथ में एक कागज या कोई हल्की चीज, भारीपन हल्कापन भारीपन, भारी मन अननेसेसरी रिलेशनशिप्स में एंगेज करके रखा है खुद को, जिन संबंधों का कोई अर्थ नहीं है, उससे कोई प्राप्ति नहीं है, उसमें फंसा के रखा है। फरिश्ता अर्थात सबसे पहली परिभाषा, हल्का। दूसरा, फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा, फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा। चार उदाहरण है। सबसे पहला उदाहरण शिव बाबा ने अपना ही उदाहरण दिया है कि वो सबका प्यारा है, परंतु हमारे पास तर्क बहुत है, वो निराकार है, यहां तो रहता ही नहीं है वगैरह वगैरह। दूसरा ब्रह्मा, वो न्यारा, परंतु उसके लिए भी हमारे पास तर्क है, उसके तन में भगवान है, ठीक है। तीसरा उदाहरण मम्मा, वो जगदम्बा थी, सब थोड़ी ना जगदम्बा है। और फिर चौथा उदाहरण दिया दादी का, हमारी दादी। मनो को जीतना, हृदय को जीतना, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है। जिन्होंने अपनी वाणी से और अपने स्वभाव से असंख्य आत्माओं को सुख दिया है, फिर भी कुछ आत्माएं तो रह ही जाएगी जो हमेशा दुखी ही रहेगी, परंतु वो दुखी अपने कारणों से है, अपने स्वभाव के कारण दुखी है। और इस संसार में हम सबकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं उनका दुखों का कारण है, और वो अपनी अपेक्षाओं को हम पर लादते हैं। जैसे एक व्यक्ति दुकान बंद कर रहा था और वहां एक कुत्ता आ जाता है, उस कुत्ते के पास एक बैग है और पैसे हैं, बैग में लिस्ट है चीजों की, सब्जियों का दुकान है, वो दुकानदार सब्जियां निकालकर बैग में डालता है, पैसे लेता है। उसे आश्चर्य होता है, ये कैसा ईमानदार कुत्ता है, इसका मालिक कौन होगा। वो उस कुत्ते का पीछा करता है, वो कुत्ता जाता है बस स्टैंड पर खड़ा रहता है, बस आती है, बस में चढ़ता है, कुत्ते के बेल्ट में पैसे होते हैं और एड्रेस होता है। वो कंडक्टर बेल्ट से एड्रेस देखता है, टिकट देता है, पैसे लेता है, बाकी पैसे वापस बेल्ट में लगा देता है और टिकट के साथ। उस दुकानदार को तो और ही आश्चर्य होता है, क्या कुत्ता है, इतना वफादार, इतना ईमानदार, कुत्ते का पीछा करते करते वो बस में भी चढ़ता है, और वहीं जब बस रुकती है और कुत्ते का स्टॉप आता है, कुत्ता उतरता है, बैग लेकर एक दरवाजे के सामने जाता है और अपने पैरों से एक दरवाजे का खटखटाता है। मालिक आता है, डंडा लेकर वो कुत्ते की पिटाई करता है। इस व्यक्ति को तो आश्चर्य होता है, ये कैसा मालिक है। वो पूछता है, तुमने इस कुत्ते को क्यों मारा। वो कहता है, मेरी नींद डिस्टर्ब कर ली, चाबी इसको एक्स्ट्रा थी, इसको लेके जानी चाहिए थी ना। संसार के लोगों की अपेक्षाएं पूरी नहीं होती है, कुछ भी करो। फिर भी श्रीमद् या मुरली क्या कहती है, सबको सुख दो, सबके प्यारे बनो, सबके स्वभाव अपने अपने, सबके संस्कार अपने अपने हैं। फिर भी ये कहा गया है, चाहे कितनी भी आत्मा, कैसी भी आत्मा हो, उसे भी भीतर से प्रेम की ही प्यास है। ऊपर से निर्दयी दिखती है, ऊपर से क्रूर दिखती है, हर शब्द जैसे जहर है, परंतु उसके भीतर भी एक हृदय है जिसे भूख है प्यार की। वो प्यार उसे बचपन में मिला नहीं है, इसलिए यह अवस्था है। जब भी कोई दुख देते हुए दिखे तो ये समझना है वो आत्मा दर्द में है, दुख लेने वाली नहीं, देने वाली। उसके भीतर एक छिपा हुआ दर्द है, इसलिए रहम दिल, करुणा उसके प्रति भी। तो दूसरा फरिश्ता अर्थात सबका प्यारा, तीसरा फरिश्ता अर्थात न्यारा, देहभान से न्यारा, जो देह के भान से डिटैच्ड है वो फरिश्ता। चौथा, फरिश्ता अर्थात कर्मेंद्रियों का राजा, अपनी कर्मेंद्रियों को जिसने अपने वश में किया है। बाप अपने बच्चों को क्या कहता है? एक एक बच्चा क्या है? राजा है। तो हम राजा है, बादशाह है, शहंशाह है, महाराजा है, सम्राट है, किंग, एम्परर। ये मेरा राज्य है, ये मन, ये बुद्धि, ये संस्कार, ये इंद्रिय, ये आंखें, ये कान, ये नाक, यही तो राज्य है और ये मेरे वश में है। तो तीसरा फरिश्ता अर्थात, चौथा फरिश्ता अर्थात राजा, पांचवा फरिश्ता और सेवा। सेवा बहुत बढ़ गई, सेवा का अच्छा विस्तार हो रहा है, परंतु फरिश्ता अर्थात क्या करे? सेवा में आत्माओं को अनुभव कराए। किसकी एडिशन करो? अशरीरीपन की एडिशन करो। क्या दो? सुख, शांति, प्रेम, खुशी, जो भी आए उसे कोई ना कोई प्राप्ति हो, किसी ना किसी शक्ति की अनुभूति हो। ये कौन है? ब्रह्मा कुमारी अच्छे हैं, ब्रह्मा कुमारी अच्छा काम कर रही है, इनका बाबा भी अच्छा है, परंतु हरेक के मुख से क्या निकले? मैं बाबा का, बाबा मेरा। ये तभी निकलेगा जब वो हमारे हृदय में है। जब तक हमें वो अनुभूति नहीं, उनको कैसे होगी कि मेरा वही है सब कुछ? ये भी साधना ही है, क्योंकि मन व्यक्तियों में फंसी हुई है, देहधारियों में फंसी हुई है। जब तक ये ना समझ आए कि ये निरर्थक है, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, तब तक उस परम की ओर बुद्धि नहीं जा सकती। तो सेवा में फरिश्ता अर्थात सेवा में क्या करे? अनुभव कराए। किस बात का अनुभव करे? अशरीरीपन का अनुभव कराए, सुख का, शांति का, खुशी का, प्रेम का, किसी प्राप्ति का और किसी शक्ति का। और हरेक के हृदय से क्या निकले? मेरा बाबा। ये है फरिश्ते की परिभाषा। तो पांच परिभाषाएं हमने देखी। सबसे पहला मुरली की शुरुआत, फरिश्ता अर्थात हल्का, लाइट। दूसरा फरिश्ता अर्थात सबका प्यारा। तीसरा फरिश्ता अर्थात देवभान से न्यारा। चौथा फरिश्ता अर्थात राजा। पांचवा फरिश्ता अर्थात सेवा में, केवल सेवा करने वाले नहीं, सेवा में क्या कराए? एक्सपीरियंस दे, अनुभव कराने वाले। एक सेकंड के लिए सभी स्थिर बैठेंगे और केवल इतना सोचो कि इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, उन सबको अशरीरीपन का अनुभव हो रहा है। मुझे नहीं, मुझे तो हो ही रहा है, परंतु जितने बैठे हैं सब अशरीरी हो जाए। स्टार्ट। छठवा फरिश्ता अर्थात डबल लाइट स्थिति। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, हल्का। पहला जो हल्का था वो दूसरा था। हल्का अर्थात वहां अर्थ अलग था, यहां अर्थ अलग है। यहां बाबा ने विशेषता की बात कही है, किसी और की विशेषता में न फंसने वाले, किसी के गुणों में फंसने वाले नहीं, नहीं तो डबल लाइट नहीं रह सकेंगे। किसी के गुण अच्छे लगेंगे तो फिर किसी के अवगुणों से घृणा होगी। कोई एक व्यक्ति अच्छा लगता है, उसकी कीमत क्या है? किसी और से घृणा उत्पन्न होगी। फिर ये चाहिए तो ये नहीं चाहिए, अगर उसके साथ वो आ जाए साथ में तो अस्थिरता होगी। कब ये जाए ताकि एकांत मिले? प्रेम को क्या करना है? अपने सर्वव्यापी बना देना है। हमारा प्रेम कैसा हो? सर्वव्यापी, सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सबके लिए। अपने मोह को सार्वजनिक मोह बना देना है, एक व्यक्ति से नहीं, सबसे। क्योंकि जब हम एक में फंसे रहते हैं तो उसी का ही चिंतन चलते रहता है, और हमारे मन में यदि किसी एक व्यक्ति का चिंतन भी चल रहा है तो उस व्यक्ति से कार्मिक अकाउंट, कर्मों का हिसाब बनते रहता है। किसी एक व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति हमारी बुद्धि में छाया हुआ है तो उस व्यक्ति से सूक्ष्म में क्या बन रहा है? कार्मिक अकाउंट बन रहा है। इसलिए बैठा हुआ योग बढ़ाना है, आंखें खोल कर देखते रहना है उसे, उस ज्योतिर्बिंद को लंबा लंबा समय अनुभव करना है। उससे शक्ति आ रही है, एक एक गुण आ रहा है। एक योग केवल गुणों का योग करो, 36 गुण, यथार्थता, परोपकार, एक 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 गुण आ रहा है। शक्तियां, 8 शक्तियां, एक 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 शक्तियां आ रही है अलग अलग प्रकार से। तो छठवां फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। क्या समझना है? अगर किसी में गुण दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, या फिर कोई कला दिखाई दे, उस कला से मोह हो गया। हाँ, कला देखना अच्छी बात है, परंतु उसमें फंसना नहीं है, डिटैच्ड। क्योंकि हरेक में कुछ ना कुछ तो है ही। किसी में बोलने की कला है, कोई दूसरा है वो बोलता नहीं, परंतु बोलने वाले से कर्म अच्छे है उसके। कोई भाषण अच्छा देता है, परंतु व्यवहार में वाणी कर्कश है। कोई लिखता अच्छा है, पर आचरण है ही नहीं। हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, उसको केवल देखना है, सीखना है, आगे बढ़ जाना है, अटकना नहीं है। सातवां फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन। फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन करने वाला। भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माएं हैं, सबके साथ मिलकर चलना ये बहुत बड़ी तपस्या है। बाबा ने कहा, अशरीरपन का अनुभव बढ़ाओ, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव बढ़ाओ। इस ड्रामा को बार बार साक्षी होकर देखना है, जैसे एक नाटक चालू है, एक एपिसोड है। सीरियल्स में कैसे एपिसोड्स होते हैं ना? एक व्यक्ति है, किसी ने उसका अपमान किया, अगले एपिसोड में उसे भूल भी जाता है। वो सीन था, पूरा हुआ, वो एक की सीन था। उस सीन में उसको वो डायलॉग दिया गया था डायरेक्टर ने, वो सीन, वो डायलॉग, स्क्रीन प्ले, वो प्लॉट था, वो ड्रामा का एक हिस्सा था, वो पूरा हुआ। दिस इज अ न्यू एपिसोड, अभी ये नया है। ड्रामा कॉन्शियसनेस, एक्टर कॉन्शियसनेस, अभिनेता हूं, इस ड्रामा में फंस नहीं जाना है। तो फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन। आठवां फरिश्ता अर्थात दो विघ्नों से परे, कौन से दो विघ्न है? देहभान और देह अभिमान, अपनी ही विशेषताओं पर मोहित हो जाते, मैं बोलता अच्छा हूं, सेवा अच्छा करता हूं, हैंडलिंग पावर अच्छी है, प्रभावित होते हैं लोग, ये सब क्या बन जाता है? विघ्न। जैसे जैसे ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ये विघ्न भी आता है, या फिर दूसरों की विशेषता से प्यार हो जाता है और वो व्यक्ति मेरा है, अपना है, पजेसिवनेस। और जिसके पास अभिमान है उसमें क्या होता है फिर, अगर उसका थोड़ा सा भी अपमान कर दो तो हर्ट हो जाते, डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे मन में एक रहता है कि मैं थोड़ा सा ऊपर हूं और ये लोग जो है ना ये थोड़े नीचे हैं, क्योंकि मुझे इनमें वो गुण दिखाई नहीं देते जो मुझ में है। हम 2 बजे उठते हैं, ये 4 बजे उठते हैं, हम 3 बजे उठते हैं, ये उठते ही नहीं, ये कभी दिखते हैं कभी गायब। इसका मतलब मैं आगे, अपने पुरुषार्थ का सूक्ष्म अहंकार। एक व्यक्ति होता है नाव में जा रहा होता है, नाव उलट जाती है, सब यात्री लापता, और वो एक व्यक्ति एक सुनसान टापू में पहुंचता है, और वो व्यक्ति टाउन प्लानर है, नगर निर्माता, टाउन की प्लानिंग करने वाला ऐसा इंजीनियर है वो। और उस नए टापू में पहुंचता है, वहां कुछ भी नहीं है, परंतु खान पान की सारी वस्तुएं वहां पर है, सारी सब कुछ चीजें हैं वहां पर, परंतु वहां निर्जन टापू है, कोई नहीं रहता, वो अकेला ही रहता है वहां पर। क्या करूं क्या करूं सोचते रहता है, और मैं कहीं पागल ना हो जाऊं ये सोचता है मेरे पास जो कला है उसका मैं उपयोग करूं, और सोचता है इसी निर्जन टापू में एक नगर बसाऊं, और वहां वो होटल बनाता है, वहां वो दुकान भी बना देता है जिसमें कोई नहीं, अंदर कंस्ट्रक्ट करता है, क्योंकि इंजीनियर है वो, टाउन मेकर है, उसे पता है टाउन कैसे बनता है, सब कुछ करता है वो, जितने साधन वहां होते हैं प्रॉपर एक नगर के नगर ही बना देता है। 20 साल बीत जाते हैं, एक चर्च भी बना देता है, 20 साल बीत जाते हैं, और एक दिन अचानक एक नाव वहां आती है, लोग देखते हैं या मानव के संकेत नजर आ रहे हैं टापू पर, वो लोग आते हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है, तो वही टाउन मेकर है, प्रसिद्ध टाउन मेकर जो खो गया था 20 साल पहले, ये तो जिंदा है, उसे भी बहुत खुशी होती है उनको मिलकर, और वो कहता है देखो मैंने क्या क्या बढ़ाई, क्या क्या बनाया, रेलवे स्टेशन बना दिया, बस स्टैंड बना दिया, और मैं काल्पनिक दुकानों में चीजें खरीदने जाता हूं, काल्पनिक चीजें खरीदने जाता हूं दुकानों में, चीजें तो है नहीं, और रात में होटल में रेस्ट करता हूं अपना ही बना हुआ, और देखो मैंने चर्च भी बनाया है। वो लोग कहते हैं चर्च तो बहुत सुंदर है, परंतु ये जो दूसरा चर्च है वो किसका है? वो कहता है वो तो टूटा फूटा चर्च है। तो लोग पूछते हैं क्या वो पहले से था? वो कहते हैं ना, वो भी मैंने ही बनाया है। वो कहता है दो चर्च? वो कहता है ये हमारे पंथ का चर्च है और वो दूसरे पंथ का चर्च है, वो टूटा फूटा जर्जर, और ये देखो कितना आलीशान है। लोग पूछते क्या एक चर्च काफी नहीं था? वो कहता है उस चर्च के बिना ये चर्च में इंटरेस्ट कहां, इंटरेस्टिंग तभी बनेगा जब वो रहेगा। है क्रिश्चियन ही पर वो दूसरा पंथ, ये दूसरा पंथ, हम बड़े वो छोटा, व्यक्ति निर्जन टापू में है 20 साल से, परंतु अहंकार उसे छोड़ता नहीं है। वरिष्ठता अर्थात देहभान और देह अभिमान के दो विघ्नों से परे। 9वां फरिश्ता अर्थात फरिश्ता स्वरूप जीवन में साकार प्रत्यक्ष दिखाई दे या साकार दिखाई दे, इसमें वो बात बाबा ने कही है कि छोटी बात हो जाती है तो क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, रोना चालू कर देते, रोते ही रहते हैं। ये क्यों भूल रहे हो, ये नाटक चल रहा है, इसमें ये सब छोटी छोटी बातें होती रहेगी हमेशा। क्या दिल खुश, दिल शिकस्त नहीं, और अपने इस स्वरूप को इमर्ज करना है। इस मुरली में एक बहुत छोटी सी लाइन है पर मुझे बहुत अच्छी लगी, फरिश्ता बनने से अशरीरीपन का अभ्यास सहज होगा। कैसी लाइन है ये, फरिश्ता बनने से अशरीरीपन का अभ्यास सहज होगा, मतलब पहले फरिश्ता बनो तो इसका अभ्यास सहज होगा। मीन्स एंजेलिक कॉन्शियसनेस, कि मैं फरिश्ता हूं, पहले इसी का अभ्यास करो, फिर उससे जो जुड़ी हुई बातें हैं वो सब परिणाम होगा। फरिश्ता बनो तो अशरीरीपन का अभ्यास सहज होगा। स्ट्रेंज बट पावरफुल। 10th पॉइंट, फरिश्ता अर्थात अपने लास्ट स्टेज फरिश्ता संस्कारों को क्या करो, इमर्ज करो। यह लंबे समय की बात बाबा ने कही है, और फिर से ब्रह्मा का उदाहरण दिया है। कोई साथ में पास में जाता था तो इतना सोच कर जाता था, सब कुछ भूल जाता था। बाबा का अपना उदाहरण दिया है कि बीच बीच में अशरीरीपन खींचता था, बीच बीच में अशरीरीपन का अनुभव, मस्तक पर क्या आत्मज्योति, बात कर रहे हैं परंतु बीच में अशरीरीपन खींच रहा है, आत्मज्योति, मैं आत्मा हूं, बस यही एकमात्र सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अशरीरीपन यही पुरुषार्थ है, सारी मुरली का सार। क्या करना है, देह से डिटैच होने के एक्सपीरियंस को बढ़ाना है, बॉडीलेसनेस, और वो अमृत वेला ही होगा सबसे ज्यादा पावरफुल। नुमा शाम भी बहुत अच्छा समय है, परंतु अमृत वेला हुआ तो शाम को होगा। अगर रोज रोज दोनों छूट रहे हैं तो धीरे धीरे केवल ये ज्ञान बल नहीं देगा, शक्ति किससे आती है, बॉडीलेसनेस से। कितने पॉइंट्स हुए, 10, फिर 11वां, नयों से मुलाकात, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं। 12वां, कर्म और योग का बैलेंस, वरदान, निराकार और आकार को क्या करो, सामने रखो तो क्या होगा, वेरीफाई कर सकेंगे, निर्भयता और निश्चिंत रहेंगे। वरदान, मास्टर प्यार का सागर बनो, अव्यक्त इशारा, प्यूरिटी की पावर, और दूसरी पावर यूनिटी, एक धर्म सत्ता के आगे तो दूसरी राज्य सत्ता के आगे। तो सारी मुरली का सार, फरिश्ता अर्थात हल्का, फरिश्ता अर्थात प्यारा, फरिश्ता अर्थात न्यारा, फरिश्ता अर्थात राजा, फरिश्ता अर्थात सेवा में अशरीरीपन का अनुभव कराने वाले, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, फरिश्ता अर्थात संस्कार मिलन, फरिश्ता अर्थात दो विघ्नों से पार, फरिश्ता अर्थात जीवन, जीवन में फरिश्तापन साकार, में जीवन में प्रत्यक्ष हो या साकार हो, और लास्ट में फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो, कि अंतिम संस्कार, अंतिम स्टेज जो है वो लाइफ में इमर्ज हो, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं, और कर्म और योग का बैलेंस जब होगा तब ब्लेसिंग मिलेगी, और साकार और निराकार को सामने रखो तो वेरीफाई कर सकेंगे, सफलता होगी। मास्टर प्यार का सागर बनो, प्यूरिटी की पावर और यूनिटी की पावर, ऐसे इतने सारे सम्मान वाले फरिश्तों को स्वराज्य अधिकारी, और लंबे समय का स्वराज्य हो, और फरिश्ता बनेंगे तो अशरीरीपन का अभ्यास सहज होगा, ऐसा अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। आज रात को सोते समय लाइट बॉडी विजुअलाइजेशन करके सोना है, बेड पर हूं पर मेरा पूरा शरीर कैसा है, प्रकाशमयी है, और फिर मैं सो रहा हूं। ओम शांति।
प्रभु का ध्यान।